लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे अर्थ याचना करते हैं कि विश्व के समस्त राष्ट्र और नागरिक हथियारों के उपयोग को कम कर शांति और अहिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguendo il nostro itinerario delle catechesi con alcuni modelli esemplari dello zelo apostolico, ricordiamo che stiamo parlando sulla evangelizzazione, sullo zelo apostolico.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। हम अपने धर्म शिक्षा माला में प्रेरितिक उत्साह की चर्चा कर रहे हैं। हम इस बात की याद करें कि इतिहास में बहुत सारे नर नारियां हैं जिन्होंने यीशु ख्रिस्त के नाम को प्रसारित किया है। उन्होंने इसे बड़े ही अनुकरणीय ढंग से किया है। इस संदर्भ में आज हम संत फ्रांसिस जेवियर का जिक्र करेंगे, जो आधुनिक समय के महानतम प्रेरित माने जाते हैं। संत फ्रांसिस जेवियर बालक यीशु के संत तेरेसा की भांति प्रेरिताई के संरक्षक संत हैं। संत पापा ने कहा कि हम बहुत सारे पुरोहितों, लोक धर्मियों, धर्म बहनों को देखते हैं जो अपनी मातृभूमि को छोड़कर प्रेरिताई कार्य हेतु विभिन्न स्थानों में जाते हैं। यह प्रेरितिक उत्साह को व्यक्त करता है। हमें इसे धारण करने की जरूरत है। हम अतीत के प्रेरितों को देखते हुए इस मनोभाव को अपने में विकसित करें। संत फ्रांसिस का जन्म उत्तरी स्पेन के नभार में एक कुलीन लेकिन गरीब परिवार में सन 1506 को हुआ था। वे एक कुशाग्र बुद्धि युवा थे जो अपनी पढ़ाई हेतु पेरिस गए। वहां उनकी मुलाकात लोयोला के संत इग्नासियस से हुई। वे उनके लिए आध्यात्मिक साधना की अगुवाई करते और यह उनके जीवन को परिवर्तित कर देता है। वे दुनियावी जीवन का परित्याग करते और एक प्रेरित बन जाते हैं। वे एक यीशु समाजी बनते और व्रत धारण करते हैं। इसके बाद वे पुरोहित बनते और उन्हें प्रेरिताई हेतु पूरब की ओर भेजा जाता है। उस समय पूरब की ओर प्रेरिताई में जाना अज्ञात दुनिया की ओर जाना था, लेकिन वे प्रेरिताई उत्साह के कारण निकल पड़ते हैं। इस भांति प्रथम जोशीले प्रेरितों का एक दल प्रेरिताई उत्साह से पूर्ण कठिनाइयों और खतरों का सामना करने को तैयार होकर उन अनजान जगहों और लोगों के बीच पहुंचा जहां की संस्कृतियां और भाषाएं अपने में विचित्र थीं। उनकी तीव्र इच्छा थी कि वे ख्रिस्त के सुसमाचार को प्रसारित करें। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, सिर्फ 11 वर्षों में ही उन्होंने अद्वितीय कार्य किए। नावों की यात्रा उस समय कठिन और जोखिम भरी थी। बहुत से लोग समुद्री यात्रा में जहाजों के टूटने या बीमारियों के कारण मर गए। फ्रांसिस जेवियर 3.5 वर्षों तक समुद्र में ही रहे। भारत जाने के लिए उन्होंने 3 साल की समुद्री यात्रा की और फिर भारत से वे जापान
गए।
भारत में गोवा पहुंचकर, जो पूर्वी पुर्तगाल की राजधानी के साथ साथ संस्कृति और व्यापार का केंद्र था, वहां उन्होंने अपने लिए निवास तैयार किया। लेकिन वे वहां नहीं रुके। वे गरीब मछुआरों के बीच सुसमाचार प्रचार के लिए भारत के दक्षिण प्रांत में गए। वहां उन्होंने बच्चों को धर्म शिक्षा दी और बीमारों को बपतिस्मा संस्कार देते हुए उनकी सेवा की। तब एक रात को प्रेरित संत बर्थोलोमी की कब्र के पास रात्रि वंदना के समय उन्होंने यह अनुभव किया कि उन्हें भारत से परे जाना चाहिए। जिन कार्यों की शुरुआत उन्होंने की थी वे सही सलामत चल रहे थे, अतः वे साहसपूर्वक मोलुकास की समुद्री यात्रा में निकल पड़े, जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह का सबसे दूर एक द्वीप था। संत फ्रांसिस जेवियर ने मोलुकास में धर्म शिक्षा को स्थानीय भाषा में गीत का रूप दिया और उन्हें गाना सिखलाया, क्योंकि गीतों में उन्हें अच्छी तरह समझा जा सकता था। हम उनके मनोभावों को उनके पत्र के आधार पर समझते हैं। वे लिखते हैं,
I pericoli e le sofferenze accolti volontariamente unicamente per amore e servizio di Dio nostro Signore sono tesori ricchi di grande consolazione spirituale. Qui in pochi anni si potrebbero perdere gli occhi per le troppe lacrime di gioia.
खतरे और तकलीफें स्वेच्छा से और केवल ईश्वर के प्रेममयी सेवा भाव से ग्रहण किए जाएं, तो वे आध्यात्मिक सांत्वना की समृद्धि बनते हैं। यहाँ कुछ सालों में ही कोई अपनी आँखों को अत्यधिक खुशी की आंसू से खो सकता है। ईश्वर के कार्य को देखकर उनकी आँखों से खुशी के आंसू बहते थे। एक दिन भारत में उनकी मुलाकात एक जापानी व्यक्ति से हुई, जिन्होंने उन्हें अपने सुदूर देश की चर्चा की, जहां कोई यूरोपीय प्रेरित अब तक नहीं पहुंचा था। संत फ्रांसिस में प्रेरिताई का तीव्र उत्साह था, अतः उन्होंने अतिशीघ्र वहां से जाने का निर्णय किया और एक चीनी व्यक्ति के कबाड़ में साहसिक यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। जापान में 3 साल उनके लिए बेहद कठिन रहे, मौसम, विरोध और भाषा की अज्ञानता, लेकिन वहां भी उन्होंने सुसमाचार के बीज बोए जो बहुत अधिक फलित हुए। संत पापा ने कहा कि वृहद सपना देखने वाले जेवियर ने जापान में इस बात का अनुभव किया कि एशिया में प्रेरिताई कार्य का एक और निर्णायक देश चीन है। उसकी संस्कृति, इतिहास, भूभाग इसके कार्य का पूरे विश्व में एक धाक थी। अतः वे गोवा लौटे और फिर तुरंत समुद्री यात्रा शुरू की, लेकिन उनकी योजना असफल रही और चीन के सानचियान एक छोटे द्वीप में उनका देहवासन हो गया। कोटोन की मुख्य धरती पर प्रवेश करने की उनकी लालसा विफल रही। 3 दिसंबर सन 1552 में उनकी मृत्यु एकदम परित्यक्त स्थिति में हुई। उनके मरण खाट के निकट सिर्फ एक चीनी व्यक्ति उपस्थित था, जिसने उनकी देखरेख की। इस भांति फ्रांसिस की भौतिक यात्रा समाप्त हुई। उनकी उम्र मात्र 46 साल की रही। उन्होंने अपने जीवन को प्रेरिताई में समर्पित कर दिया। वे सुसंस्कृत स्पेन से निकलकर उस समय विश्व के सबसे संस्कृत देश चीन पहुंचे और चीन के प्रवेश द्वार में उनकी मृत्यु एक चीनी व्यक्ति के सानिध्य में हुई। संत पापा ने कहा,
La sua attività intensissima è stata sempre unita alla preghiera, all'unione di Dio, mistica contemplativa, non lasciò la preghiera mai.
उनकी तीक्ष्ण क्रियाकलाप सदैव प्रार्थना, ईश्वर से जुड़े थे। उन्होंने प्रार्थना का कभी परित्याग नहीं किया, क्योंकि वे उनमें निहित शक्ति को जानते थे। जहां कहीं भी वे गए, उन्होंने बीमारों, गरीबों और बच्चों की सेवा की। वे एक कुलीन प्रेरित नहीं थे, वे सदैव अत्यंत जरूरतमंदों के साथ रहे, बच्चों के संग जिन्हें शिक्षा, धर्म शिक्षा की अति आवश्यकता थी। उन्होंने सदैव बीमारों की सेवा की। यह ख्रिस्त के प्रति उनका प्रेम था जो उन्हें सुदूर प्रांत में ले चला, जहां निरंतर कठिन मेहनत और खतरा, असफलता, निराशा और हताशी थी, लेकिन ये सारी चीजें उनके लिए सांत्वना और खुशी का कारण रही, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक ईश्वर की सेवा और उनके अनुसरण में अपने को समर्पित किया। संत पापा ने कहा कि संत फ्रांसिस जेवियर के कार्य, जिसे उन्होंने अति निर्धनता और साहस में पूरा किया, हमें सुसमाचार की घोषणा हेतु उत्साह प्रदान करे। आज बहुत से युवा हैं जो अपने में बेचैनी का अनुभव करते हैं, जो नहीं जानते कि इस बेचैनी का क्या किया जाए। संत पापा ने ऐसे युवाओं को संत फ्रांसिस की ओर निगाहें फेरने का आह्वान किया। आप विश्व के क्षितिज जरूरतमंद लोगों को देखें, जो दुख सहते, जो यीशु की चाह रखते हैं। आप साहस के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि आज भी बहुत सारे साहसी युवा हैं। उन्होंने पोपुआ न्यू गिनी, वानिमो और विभिन्न स्थानों में प्रेरित कार्य में संलग्न लोगों की याद की जो संत फ्रांसिस जेवियर के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सुसमाचार की घोषणा करते हैं। ईश्वर हम सबों को सुसमाचार प्रचार करने की खुशी प्रदान करे जहां हम उनके सुंदर संदेश को आगे ले चलते हैं जो हमें और सबों को खुशी से भर देती है। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Tu hi shanti hai mere Prabhu, mujhe shanti se bhar de Prabhu. Teri shanti main jag mein phailaun, aisa anugrah paun sada.
शांति है मेरे प्रभु मुझे शांति से भर दे प्रभु तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं ऐसा अनुग्रह।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वाटिकन के संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में अपने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के दौरान अपनी धर्म शिक्षा में प्रेरितिक उत्साह के प्रतीक के रूप में आधुनिक समय के सबसे महान मिशनरी संत फ्रांसिस जेवियर की प्रशंसा करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि ख्रीस्त के प्रेम ने उन्हें दुनिया के सबसे दूर हिस्सों में सुसमाचार फैलाने के लिए प्रेरित किया। इसी के मद्देनजर संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट कर सभी विश्वासियों से संत फ्रांसिस जेवियर की तरह मसीह के मिशनरी बनने हेतु प्रेरित किया। ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, मिशन की मुश्किलों और कठिनाइयों के बीच संत फ्रांसिस जेवियर की प्रतिबद्धता और उदाहरण हमें मिशनरी के गहरे आनंद की खोज करने में मदद करती है जो ख्रीस्त को पृथ्वी के सबसे दूर के छोर तक ले जाने में प्रसन्न है। अपनी धर्म शिक्षा समाप्त करने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने तीर्थ यात्रियों को अपने अभिवादन में यूक्रेन में चल रहे युद्ध और इसके अंत के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, हम सभी ईश्वर से तड़पते यूक्रेन के लिए प्रार्थना करते हैं। यूक्रेन बहुत पीड़ित है, लोग पीड़ा में हैं। आइए हम घायलों के लिए, बच्चों के लिए और जो मर गए हैं उनके लिए एवं देश में शांति की वापसी के लिए प्रार्थना करें। पोलिश तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए विशेष रूप से मौलिक स्थापित समुदाय के जीवन की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध समूह से संत पापा ने कहा, कल 16 मई को पोलैंड की कलीसिया ने शहीद जेसुइट पुरोहित संत अंद्रयास बोबोला को याद किया था। उन्हें हम आपकी मातृभूमि और अन्य देशों के सभी कठिन समस्याओं को सौंपते हैं, विशेष रूप से यूक्रेन में शांति की समस्या को सौंपते हैं। अंत में अरबी भाषी विश्वासियों का अभिवादन करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने प्रार्थना के मूल्य को रेखांकित किया। संत पापा ने कहा, मई का महीना माता मरियम का महीना है और इस महीने माता मरियम को समर्पित रोजरी प्रार्थना की जाती है। यह हमारी मुक्ति के इतिहास का एक संग्रह है। पवित्र रोजरी माला बुराई के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार है और हमारे दिलों में सच्ची शांति प्राप्त करने का एक प्रभावी साधन है। जैसा कि फिलिस्तीनियों ने 15 मई को अल नकबा तबाही के 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया, जिस दिन इजरायल राज्य 1948 में अस्तित्व में आया था, उस दिन अपनी मातृभूमि से जबरन निष्कासन की याद में यरूशलेम में कलीसियाओं के प्रमुखों की परिषद पवित्र भूमि में एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए प्रयास करने के लिए कलीसियाओं के आह्वान को दोहराया। सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया है, हमारा विश्वास हमें सिखाता है कि मानवता में हम सभी भाई बहन हैं और हमें एकजुट होकर शांति, सहिष्णुता और न्याय हासिल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ख्रिस्तीय धर्म ने हमें सिखाया है कि प्रेम, करुणा और आपसी सम्मान दुनिया में शांति प्राप्त करने का मार्ग है और यह विशेष रूप से हमारी प्यारी मातृभूमि पर लागू होता है। अल नकबा उन 7 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को याद करता है जो 1948 में अपने घरों से भाग गए थे या उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। मध्य पूर्व में 5 मिलियन से अधिक इन शरणार्थियों और उनके वंशजों का भाग्य चल रहे अरब इजराइल संघर्ष में एक प्रमुख विवादित मुद्दा बना हुआ है। इजराइल ने लंबे समय से खोए हुए घरों में शरणार्थियों की बड़े पैमाने पर वापसी की मांग को खारिज कर दिया। इस वर्ष स्मरणोत्सव इसराइल फिलिस्तीनी हिंसा की पृष्ठभूमि के खिलाफ है, जिसमें जनवरी से अब तक 140 से अधिक फिलिस्तीनियों और कम से कम 19 इसराइलियों और विदेशियों की मौत हुई है। अपने बयान में यरूशलेम के प्राधिधर्माध्यक्ष ने एक बार फिर सभी के लिए एक बेहतर और अधिक मानवीय भविष्य बनाने के लिए एक साथ काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, शांति तभी प्राप्त की जा सकती है जब मानव अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए निष्पक्षता और सम्मान हो। बयान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया गया कि वे समुदायों की सुरक्षा और पवित्र स्थानों एवं वर्तमान स्थिति के नियमों के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाएं। ख्रिस्तीय नेताओं ने फिलिस्तीनी लोगों को आत्मनिर्णय, राज्य निर्माण और पवित्र भूमि में सभी लोगों को शांति, गरिमा और समृद्धि में रहने के लिए समृद्धि का अधिकार प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपना बयान समाप्त किया। उधर दक्षिण पूर्व एशिया के कई शहरों में असामान्य रूप से उच्च तापमान का अनुभव हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में अब तक के उच्चतम तापमान दर्ज किए गए हैं। वियतनाम में मौसम विज्ञान पूर्वानुमान के अनुसार रविवार को वियतनाम के शहर तुओंग डुओंग में तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। लाओस के एक शहर लुआंग प्रबांग ने भी अपना रिकॉर्ड उच्च तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। इस बीच थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक ने सप्ताहांत में 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड बनाया। देश की राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसी ने कहा कि सिंगापुर ने शनिवार को 40 वर्षों में अपना उच्चतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। उच्च तापमान कई कारकों से जुड़ा हुआ है, जिसमें वायु प्रदूषण का बिगड़ना शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में घने कोहरे की चादर छा जाती है। खराब वायु गुणवत्ता और वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के कारण अत्यधिक गर्मी के संयोजन ने हीट स्ट्रोक और श्वसन, हृदय और गुर्दे की बीमारियों के जोखिम को बढ़ा दिया है। उधर इम्फाल महाधर्म प्रांत ने 45,000 से अधिक शरणार्थियों के लिए राहत की अपील की है, जो जातीय मैतेई और कीकू के बीच संघर्ष के शिकार हुए हैं। राज्य के 16 जिलों में सेना द्वारा लगाई गई तनावपूर्ण शांति कायम है। इस बीच मरने वालों की संख्या 60 तक पहुंच गई है। 8 स्थानों पर कैथोलिक सुविधाओं सहित लगभग 40 गिरजाघर प्रभावित हुए हैं। इम्फाल के महाधर्माध्यक्ष डोमिनिक लुमोन ने अपने महाधर्म प्रांत की ओर से म्यांमार की सीमा पर छोटे से राज्य मणिपुर, ज्यादातर हिंदू बहुसंख्यक मैतेई और मुख्य रूप से ख्रिस्तीय अल्पसंख्यक कीकू के बीच संघर्ष के बाद तबाही से विस्थापित हुए हजारों लोगों की मदद करने के लिए राहत की मांग की है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।